अक्षु ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। कहते सोफे पर बैठा अक्षित फट से खड़ा हो जाता है। बेड पर बैठी संध्या अक्षित की ओर देखते, क्या हुआ अक्षित? अक्षित नामे सिर हिलाकर खिड़की के पास जाकर हाथ बांधे खड़ा होता है। संध्या आक्षी की ओर देखकर अक्षित की ओर जाती है और अक्षित के हाथ में अपना हाथ डालते हुए अक्षित की बांह पर सर रखकर खड़ी हो गई और दोनों सामने दिख रहे चांद को खामोशी से देखने लगे। सबको परेशान देख नीलू कहती है, आप सब तो समझने की कोशिश कीजिए, कुछ तो खा पी लीजिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही। जानती हूं कि हम सब अक्षु को लेकर परेशान हैं, पर ऐसे रहने से क्या होगा, आप सभी बताइए। पहले ही मुश्किल आई है, आप सब बीमार पड़ गए तो? नीतू जी, कैसे खा ले, पता नहीं उस देव ने हमारे बच्चे को कुछ भी खिलाया होगा या नहीं। मंजू जी, और क्या, हमारा बच्चा भूखा प्यासा हुआ तो, और हम यहाँ खाएं पिए, तभी वहां बाहर से रंजन आ जाता है। नीलू, रंजन अब आप ही समझाएं, ये सब तो जिद पकड़े हुए हैं ना खाने की। रंजन, आप सब मान जाइए ना, थोड़ा थोड़ा खा पी लीजिए, क्यों जिद कर रहे हैं, खाना कितना जरूरी है पापा आपके लिए, और मासी जी आपको भी दवा लेनी होती है, आपको जिद करके जबरदस्ती खिला दे, आज वो दोनों इस हालत में नहीं है, उनका सोचिए, पहले ही हालात नहीं सुलझ रहे हैं दोनों से, आपको कुछ हो गया तो? रात होने को है, आप सबने पानी का एक घूंट तक ना पिया, आप सब क्या चाहते हैं, अक्षित संध्या और परेशान हो? नीतू जी, मंजू जी, अंकित जी, ऋषि जी, सब नम आंखों से नामे सिर हिलाते हैं। नीलू, सही कहा रंजन ने, उन दोनों को जाकर कहूंगी तो भी उनके हलक से एक निवाला ना उतरेगा, पर कम से कम और मुश्किलें तो ना बढ़ाएं। रंजन, मैं ये नहीं कहता कि आप सब एक दिन बिन खाए नहीं रह सकते हैं, पर आज तो सुबह के बाद किसी ने कुछ नहीं खाया। अंकल आंटी, आपने तो व्रत भी रखा था ना मीरा की शादी का, और आप सबके लिए खाना जरूरी है। अक्षित संध्या, अंकित जी, मंजू जी, चारों ने मीरा की शादी संपूर्ण होने तक व्रत रखते हैं, क्योंकि बेटी बहन मानकर शादी कर रहे थे मीरा की, और तभी अक्षु वाला हो गया, उसके बाद ना कोई कुछ खाया पाया ना पी पाया। मंजू जी, खाया तो मेरे अक्षित संध्या ने भी कुछ नहीं। वो नीलू आनेंगे, पर आप मान लो, चलिए ना थोड़ा सा खा लीजिए, वरना जब अक्षु आ जाएगा तो मैं उसे कहूंगी अपने नाना नानी दादा दादी से नाराज हो जाओ, बात ना करो इनसे, इन्होंने अपना ख्याल ना रखा। सब नहीं, रंजन डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करते, आइए। नीलिमा, मैं मासी जी की दवा लेकर आती हूँ। रंजन, हाँ पापा की मैं ले आया हूँ घर जाकर। अक्षित का रूम, अक्षित संध्या दोनों खिड़की के पास खड़े होते हैं, तभी किसी ने डोर नॉक किया। अक्षित संध्या दोनों पीछे मुड़कर डोर की ओर देखते हैं तो वहां संधू खड़ी होती है। अक्षित मामू, संध्या बुआ, अंदर आ जाऊं? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया तो संधू भागकर दोनों के पास गई और दोनों के चेहरे की ओर देखने लगी। संधू, अक्षु की याद आ रही है आपको? अक्षित संध्या दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और संधू की ओर देखते एक साथ कहते हैं, बहुत। संधू ने दोनों के हाथ पकड़े और बेड पर ले जाकर बैठा दिया और सामने खड़ी कहती है, मुझे भी आ रही है और वो भी हमें बहुत मिस कर रहा होगा। अक्षित संध्या दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। संधू, बट मामू बुआ, कल जब वो घर आएगा ना तो आपसे बात नहीं करेगा, आपसे एंग्री हो जाएगा। और अक्षु सेट भी, सैड सा मुंह बनाते हुए। संध्या, क्यों? अक्षित, हाँ वो क्यों अपसेट होगा? होगा ही ना, आप दोनों अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, उसे बुरा लगेगा ना, आपने अपनी केयर नहीं की। मम्मी पापा ने नीचे तो सबको समझा दिया, सब मान भी गए, प्लीज आप भी मान जाओ। कहते संधू ने अपनी ड्रेस की पॉकेट से बिस्किट का पैकेट निकाला और खोलकर दो बिस्किट निकाले और अक्षित संध्या के मुंह के सामने करते हुए, मामू बुआ आपने कुछ नहीं खाया, प्लीज ये खा लो अक्षु के लिए, उसे अच्छा लगेगा। हमारा अक्षु कभी नहीं चाहता कि आप दोनों ऐसे अनहैप्पी और भूखे रहो, प्लीज ये खाओ। अक्षित संध्या एक दूसरे की ओर देखते हैं और दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और संधू के हाथ से लेकर बिस्किट खा लिए और दोनों ने हाथ फैलाकर एक साथ संधू को अपने सीने से लगाया। संधू दोनों के गले लगे हुए कहती है, हम सबने अक्षु के लिए प्रे किया है, अक्षु बिल्कुल ठीक होगा, डोंट वरी, वो हमें जल्दी मिल जाएगा। मामू बुआ, गॉड जी अक्षु का ख्याल रखेंगे। अक्षित संध्या के चेहरे की ओर देखते, अक्षित संध्या दोनों हाँ में सिर हिलाते हुए संधू के गाल पर दोनों हाथ रखते हैं। देव ओटो से कंबल निकालते हुए खुद से कहता है, कंबल तो है पर अपने बेटे को सुलाऊंगा कहाँ, खिलौने तो ले आया पर उसके सोने के लिए कुछ ना लाया और मेरी गोद में भी वो ना सोएगा। एक काम करता हूँ, ये ओटो की सीट निकाल लेता हूँ, आराम से सो तो पाएगा मेरा बेटा। कहते देव ने अपनी ओटो की पीछे वाली सीट निकाल ली और उसे ओटो के पास खड़ा करके ओटो की आगे वाली साइड बैठा और वहां नीचे से शराब की बोतल उठाई और बोतल के ही मुंह लगाकर शराब पीने लगा। शराब पीकर बोतल बाहर की तरफ फेंक कर खुद से कहता है, बस आज की रात, संध्या कल तुम मेरे पास होंगी, मैं सुबह होते ही तुम्हें फोन करूंगा और यहाँ बुलाऊंगा, फिर तुम भी मेरी और मेरा बेटा भी। जो चाहता हूँ वो मैं पालूंगा और कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम्हें संध्या मेरे पास आना ही होगा, मेरा होना ही होगा, क्योंकि तुम सिर्फ देव दीक्षित की हो। और गाने लगा, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। और ऑटो से उछाल मारकर बाहर निकलते हुए कहता है, नाना तू प्यार देव दीक्षित का है और कोई मेरे प्यार को चाहे, नाना ये तो नहीं हो सकता है, बोले तो नहीं होने दूंगा। और जिसने भी ये करना चाहा, मतलब उस अक्षित ने मेरी संध्या को चाहा, उसके पास आया, ये सब करने की हिम्मत की है ना, अब सजा तो मिलेगी, भुगतेगा तू अक्षित। तूने मेरी संध्या को अपना बनाने का साहस करके बहुत बड़ी भूल की है और सजा तुम्हें मार दूं, पर मैं ना तुम्हें एक ही पल में नहीं मारूंगा, क्योंकि ऐसा करना होता तो अब तक मैं कर देता, पर मुझे तो तुम्हें पल पल मारना है, ऐसी मौत कि तुम्हारा पल पल नासूर बन जाए। इतने दिनों में एक बात तो समझ ही चुका हूँ, जान ही चुका हूँ, मेरे बीवी और मेरे बच्चे में तुम्हारी जान बसती है, जान छिड़कते हो ना जो मेरे हैं उन पर जब यही पास ही नहीं रहेंगे, तुमसे जान ही छिन जाएगी तुम्हारी, फिर अक्षित अक्षित ना रहेगा, जान दूर होगी तो अक्षित लाश बन जाएगा, जिंदा लाश जिसका अस्तित्व ही खत्म, कुछ ना बचेगा फिर तुम्हारे पास अक्षित सक्सेना, तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी जिंदगी ही छीन लूंगा मैं, और फिर तुम तड़पेगा पल पल जैसे मैं तड़पा हूँ रात दिन संध्या के बिना। जेल में कैसे एक एक पल काटा है, अब तुम्हारे लिए मैं बाहर ही जेल बना दूंगा, मेरी संध्या मेरा बेटा अब मेरे साथ होंगे, तुम्हारे पास नहीं कहते, जोर जोर से देव हंसने लगा और हंसते हुए सीट कंबल उठाकर उस खंडहर के अंदर चला गया। क्रमशः